है जरा सूक्ष्म कठिन है, एक बार बैठ गए तो फिर बांधा नहीं। योगी तो जब समाधि करेगा सुख सुख समाधि छोटी तो फिर संसार का चिंतन करेगा विक्षेप होगा। ज्ञानी का एक बार ज्ञान हो गया फिर संसार का चिंतन करो। घाट वाला बाबा अखबार पढ़ रहे पंजाब केसरी, पंजाब केसरी में तो इंदिरा ऐसा किया वैसा किया, इंदिरा के पोल खोल दिया पंजाब केसरी वाला। जब चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान का ये हो रहा है, बॉर्डर पे जरा कुछ करवा देते छमकला, और इंदिरा जिताओ देश बचाओ, इंदिरा जिताओ देश बचाओ। जब कुर्सी हिलती है तो कहीं ऐसा वैसा कर देते हैं बॉर्डरों पर और जनता को मूंढ लेते। और ये महाराज ने भी लिखा है, जैनी महाराज ने, मत्स्य उद्योग के नाम से हजारों मच्छियों को करोड़ों मछलियों को तड़फा तड़फा के प्राण निकलवाना, मुर्गियों को मुर्गियों को उद्योग करके मुर्गियों को रिबा रिबा के मौत के घाट उतरवाना, गायों की खुलेआम कत्ल करवाना, ऐसा प्रजा से हिंसात्मक आसुरी प्रवृत्ति कराने वाली इंदिरा गांधी जनता को सत्यानाश के खाई में ले जाएगी, ऐसा लिखा है जैन मुनि, जिन की बात कहा अभी मैंने पढ़ा आज। तो उनकी अपनी दृष्टि से उन्होंने लिखा, उनको जो सही लगा, ऐसे पंजाब केसरी वाले को जो सही लगता था वो इंदिरा के लिए लिखा। तो वो घाट वाला पढ़ते पंजाब केसरी अखबार, तो मैंने बोला ये तो इसमें तो किसी का निंदा होगा किसी का प्रशंसा होगा, अखबार में और क्या होगा, या तो राग होगा या तो द्वेष की बात होगी। आप ये क्या करते हैं सारा दिन, ये तीन तीन घंटे दो दो घंटे अखबार देखकर, संसार का थोड़ा सा चिंतन करने वाला आदमी विक्षेप में हो जाता है, आज तुम ये इतने घंटों पर अखबार पढ़ते। बोले मैं पढ़ जाता हूँ फिर ट्रैक्टर घुमा देता हूँ, फिर वहां कुछ नहीं। रमण महर्षि भी पढ़ लेते थे लेकिन वो लोग काम निपटा के पढ़ते थे, जगत को बाधित करके घाट वाले पढ़ते या वो लोग पढ़ते तो काम निपटा के पढ़ते, और अपन लोग जगत सच्चा लगता है ऐसा समझ के पढ़ते, उनको तो लगता है खेल सब। तो जिनको ज्ञान हो गया है ऐसे व्यक्तियों की अष्टावक्र कहते तुलना के न जायते, उनकी कंपैरिजन किससे करें। राजे राजवताम युवे युवा, राजाओं में राजा जवान में जवान, महिलाओं के साथ पूरा उनका, और मिल गए फकर तो पूरा साधु है, मिल गए मंडलेश्वर तो पूरा मंडलेश्वर, मिल गए नेता तो पूरा नेता, मिल गए जोगी तो पूरा जोगी, मिल गए भोगी तो पूरा भोगी, आश्चर्य त्रिभुवन जय। क्योंकि उसका आत्मा सबका आत्मा हो गया, ज्ञानी सबसे सेट हो सकता है। इसलिए ज्ञानवान के पास मुसलमान भी कुछ तसल्ली ले लेगा, हिंदू भी ले लेगा, जैन भी ले लेगा, देवी भी ले लेगा, भोगी भी ले लेगा, त्यागी भी ले लेगा, चंबल वाला भी ले लेगा, मंदिर वाला भी ले लेगा, क्योंकि ज्ञानी सबका आत्मा हो गया। और अपन लोग जो है साधक लोग, अपनी तो एक ही दिशा होती है, एक पगडंडी होती है, आओ करा है ना, ना करा ना, आओ ठीक अठीक, तो अपने अपने तराजू में हम लोग जीते हैं। श्री कृष्ण सब तराजू के पार चले गए, युधिष्ठिर सत्य के तराजू को संभाल रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर धर्मात्मा तो थे, युधिष्ठिर के मंदिर या युधिष्ठिर के उपदेश की गीता हमने सुनी नहीं, कृष्ण की गीता आज तक मौजूद है, उसके मंदिर कृष्ण कन्हैया लाल की जय करते ही हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि वो अपने में जिए थे, अकर्तृत्व में अभोक्तृत्व। तो कर्मकांड की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण तो घोर नरक में होंगे। अरबस्तान का एक वजीर ने तीन शादी कर ली, और जिससे भी शादी करता उसको बोलता मैं पहली शादी कर रहा हूं तुम्हारा, हम तीसरी आई वो भी पहली होके आई थी तीसरी बेगम, फिर पता चला घर में तो धरा धरी लड़ा लड़ी, और स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, स्त्री स्त्री को नहीं सहती नहीं सहती, उनमें झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ तो राजा साहब को पता चला कि वजीर ने तो तीनों को अपना कुंवारापन समझा के पटा के शादी किया, न्यायालय में मुकदमा दे दिया, और राजा ने कड़ी सजा करने को न्यायाधीश को फरमान किया।
तो कड़ी सजा करो, मृत्युदंड दे दो, दे दोगे मृत्युदंड तो भी कोई हरकत नहीं। मेरा वजीर है तो क्या है, वजीर को भले वीआईपी कोटा से कोई सजा दी जाए, जैसे आतंकवादियों के लिए कोई वीआईपी कोटा का कायदा बन गया ना, स्पेशल बन गया ना मृत्युदंड, ये वो तो राजा ने फरमाया कि उस वजीर को, मेरे वजीर को मृत्युदंड दे दोगे तो कोई हरकत नहीं। न्यायाधीश ने कहा हजूर इसको मृत्युदंड नहीं, इसको उससे भी कड़ी सजा देनी चाहिए। राजा चौंका, रेडी हड्डी सीधी हो गई, बोले मृत्युदंड से भी कोई कड़ी सजा होती है, फांसी से भी कोई कड़ी सजा? बोले जी महाराज, ये तीनों लुगाइयों के साथ जीवन भर रहे, तीनों लुगाइयों के साथ जीवन भर रहे। बोले सजा है कि वरदान है? बोले महाराज उस मृत्युदंड में तो एक बार चांप दबाया मरेगा, इसमें रीबा रीबा के मरेगा। अब तीन वालों की ये हालत, जिसको 16108 है और उसकी बंसी को याद करते हो और तुम मुस्कुराते हो। मानना पड़ेगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व से पार है, इसलिए उनकी गीता में इतना बोझ, उनकी याद में इतनी खुमारी। गोवर्धन उठा देना, रूपदेश देखो, बड़े बड़े विद्वान कनेडा का प्रेसिडेंट, गीता पढ़ के बोले बाइबल पढ़ता, एंजली पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन गीता से जो शांति मिला वो किसी को? अगर वो भोगी होते जैसे हम लोग एक स्त्री में उलझ जाते, दो स्त्री में, पांच स्त्री में, तीन में, ऐसे अगर वे होते शरीर में मैं मानकर, तो 16108 हो कैन, आपको तो अनुभव होगा, एक हो जाती तो काफी है ना। तो जिसको स्व का छंद मिल गया, आत्ममस्ती, उसके लिए फिर प्रकृति के साथ पदार्थ उसको असर नहीं। और जिसको स्व का छंद नहीं मिला, उसको तो पुण्य करेगा तो भी असर करेगा, पाप करेगा तो भी असर करेगा। पुण्य भी आदमी को कुछ कर देता है, पाप भी कुछ कर देता है। ऐसा नहीं कि पाप गिराता है, कभी कभी पुण्य भी गिराता है, पुण्यशाली अहंकार आ जाए, पुण्यात्मा होने का अहंकार हो जाए। अब तुम नाराज ना हो तो मैं एक बात बता दूं, हमारे नजीक कुछ कुछ लोग आते हैं, जितना मैं उन्हें उठाना चाहता हूं वे नहीं उठ पाते, तो मैं कभी कभी नाराज हो जाता हूं। इधर रहने वालों पर तो ज्यादा नजर जाती, तो इधर वालों को बेचारों को डांटता हूं, जो इधर मेरे इर्द गिर्द रहते हैं उन्हीं को डांटूंगा और क्या करूंगा। फिर मेरे को बहुत चिंतन करने के बाद परसों ये बात समझ में आई, इधर रहने वाले का कसूर नहीं है, उसका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं, जमाने का भी कसूर नहीं, ये सब ठीक ही हुआ है। क्योंकि हम जब साधना करते सोचे कि मेरे को एक बार ज्ञान हो जाए, फिर जो नहीं चलेगा उसको भी पकड़ पकड़ के ले चलूंगा, नहीं मानेगा उसको भी भगवान का रास्ता बना दूंगा, ऐसा फोर्स रहता था। तो भगवान ने चुन चुन के ऐसे सैंपल भेजे मेरे पास, जिनको चलना ही नहीं, साक्षात्कार करना ही नहीं, सब मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। अब मैं उनको चलाता तो चलते नहीं, तो बोले ले अब मार जोर देखे तो। जय जय। तो कभी कभी जिस बात का अहम होता है ना, उसको तोड़ने के लिए भी भगवान ऐसी लीला कर देते। हमारे को था कि कैसा भी आ जाएगा मेरे पास आएगा, उसको तो मैं कैसे भी समझा बुझा के धाम मार ये वह करके, योग के बल से, वरदान से, श्राप से, युक्ति से, विनोद से, कैसे भी करके बस जलाऊंगा इस पर से, उनको साक्षात्कार कराऊंगा जो मेरे करीब आ जाएंगे, देह पकड़ के जबरदस्ती। बोले अच्छा देखेंगे। तो अभी ऐसे ही मेरे इर्द गिर्द लोग भगवान ने भेज दिए कि जिनको साक्षात्कार से कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर बेचारे चलते हैं, थोड़ा बहुत तो चलते हैं। जितना मैं होशली चलाना चाहता हूं उतना नहीं चल सकते। तुम्हारे में भी ईमानदारी, तुमको वैराग्य लगा, संसार मिथ्या लगा, आत्मज्ञान पाने के लिए तुम पहुंचे हो, बोलो क्या है? आत्मज्ञान क्या है इसमें? 99% लोगों को तो खबर भी नहीं है, बात करते हो। आत्मज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है, 99% लोगों को तो खबर भी नहीं थी,
तो कैसे भी करके विनोद से सुना सुनाया करके आ गए अब समझते कि आत्मज्ञान पाना है। लेकिन शुरुआत में श्री गणेश आत्मज्ञान के लिए क्या था? कोई नौकरी जोए, कोई छोकरी जोए, कोई वाड़ी जोए, कोई गाड़ी जोए, कोई लाड़ी जोए, ए रीते बधु भेगू छू। कोई ने कहे बापू हारा छे प्रसाद बहु आपे छे एटले आया। कोई कोई आया होगा और वो भी वैराग्य से आए। संसार मिथ्या है, जलती आग है, उस आग से भागो और आत्मज्ञान पालो। दौर के कोई आया ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। ऐसा आया और हम देर भी नहीं करते, नहीं ऐसा को तुम खोजते रहते। मैं सच बोलता हूँ, ये विनोद की बात नहीं है। एकदम संसार जिसको तुच्छ लगे, मिथ्या लगे, ईश्वर के सिवा जो एक क्षण रह नहीं सकता, ऐसा आदमी आया तो इधर हम देर थोड़े करते। हम कोई कंजूस थोड़े है, मुर्दाल थोड़े है कि देर 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 आ जा ले जा फटाफट। हम तो इंतजार खोजते हैं कोई लेने वाला मिले। हम देर देर में नहीं मानते। हम हमारा स्वभाव स्फूर्तिला है, सच बोलता हूं मैं। जो साधन काल में क्या था कि जैसे भी आएंगे घर के तरफ प्राणे ले चलेंगे और ले चलेंगे तो चुन चुन के ऐसे ही भेजे कि जल्दी नहीं चलते। जितना हम स्पीड से चलाना चाहते उतना नहीं चलते, ज्यादा फोर्स करते तो फिर नाराज हो जाते लोग। फिर भी हो रहा है, कैसे भी आए आए अब तो चल गए, ईश्वर की गाड़ी में बैठ गए। हम गाड़ी को हवाई जहाज बनाना चाहते, वो बोल रहे बापू भले गाड़ी रही स्टेशन टेशन भी रुके तो सही, अभी सत्संग पूरा होगा करेंगे भीड़। इतना वैराग्य की ज्ञान की बात बताएंगे फिर आएंगे क्या महत्व के बाद की? भागवत मकान खाली करे हो कहा आशीर्वाद डालो ओम ओम। अगर हम अंतःकरण में रहते तो अभी तो हम खिन्न होकर नाराज होकर पागल होकर उब कर चले जाते, लेकिन हम गुरु के जगह पे रहते तत्व ज्ञान से, इसलिए कैसा भी होता है हमारे को फिर ठेस नहीं लगती। नहीं तो दो पांच कुटुंबी लोग भी इधर उधर करते तो चित्त में ठेस लगती, आदमी का बुढ़ापा जल्दी आ जाता। और इधर सैकड़ों हजारों आदमी और कोई कैसी करता है, कोई कैसा है, कोई कैसी गद्दारी करता है, ऐसे कई कड़वे अनुभव होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की दया से तत्व ज्ञान में आ जाते ना, इसी का नाम दुनिया है। चल आगे की बात करो, नहीं तो आदमी उसी में तोल जोक के अरे मैंने ऐसा किया उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा करा और उसने ऐसा बदला दिया। आज मेरे को किसी ने पूछा कि स्वामी जी तुमने लोगों के लिए इतना इतना करते हो, लोग बदले में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार, आपको दुख नहीं होता? मैं कह नहीं होता हमको।
अब आपका समय है, बड़ा कीमती समय है। इस कीमती समय में अत्यंत कीमती बातें समझनी होगी और जिन बातों को ठीक से समझ लेने के बाद न कर्म करने की आवश्यकता है, न धर्म करने की आवश्यकता है, न भक्ति करने की आवश्यकता है, न योग करने की आवश्यकता है, न भोग करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। कर्मी के कर्म होने लगेंगे, योगी का योग होने लगेगा, धर्मी का धर्म होने लगेगा, तपी का तप होने लगेगा, जपी का जप होने लगेगा। इस सूक्ष्म बात को अगर समझ ले तो श्री राम। सुख का भोगता और सुख का ज्ञाता एक नहीं हो सकता है, दुख का भोगता और दुख का ज्ञाता एक नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनना, का भोगता और ज्ञाता एक होता तो अपने शरीर में अनंत वो सुख दुख भोगते रहते, लेकिन उनका सुख दुख का ज्ञान हम नहीं पाते। हमारे शरीर में करोड़ों कीटाणु हैं, वो सुख दुख भोगते हैं लेकिन हमें उनका दुख नहीं होता, उनका सुख हमें नहीं होता, क्योंकि उनके छोटे छोटे शरीरों के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है। अब वो सब मिलकर सारे शरीर के कीटाणु मिलकर हमारा समष्टिमय होता है। ऐसे ही अनंत के शरीर मिलकर समष्टि कहा जाता है। अनंत शरीर मिलकर एक संसार कहा जाता है। उस पिंड में भी संसार है, अनेक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं। जीवाणु सब निकाल दिए जाएं तो क्या हम जी सकते हैं? शरीर में से कीटाणु सब निकाल दें तो जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। फिर भी उन कीटाणुओं के सुख का या दुख का असर हम पर नहीं होता। ऐसे ही जो भोगता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, और जो ज्ञाता है वो भोगता नहीं हो सकता है। लेकिन इसका विवेक न होने के कारण भोक्ता के साथ ज्ञाता तादात्म्य कर लेता है। इसलिए ज्ञाता बेचारा अपनी कुर्सी छोड़कर भोक्ता से जुड़ जाता है अनजान। जुड़ने पर भी वो निर्लिप्त रहता है, लेकिन उसे अपनी निर्लिप्तता का बोध नहीं, अपनी निर्लिप्तता का उसे ज्ञान नहीं। भोक्ता के साथ ज्ञाता की एकता हो नहीं सकती, करना चाहे तो हो नहीं सकती, और होती हुई दिखे तो टिक नहीं सकती। ज्ञाता और भोक्ता की एकता हो नहीं सकती, करें तो टिक नहीं सकती, क्योंकि भोक्ता सुख दुख का भोक्ता होता है और ज्ञाता दोनों से पृथक होता है, सुख से दुख से। भोक्ता सुखी हुआ तभी भी ज्ञाता ने जाना कि सुख हुआ, और सुख चला गया तभी भी ज्ञाता ने जाना कि सुख चला गया, दुख हुआ। ये सब सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन भोक्ता की अवस्था बदलती है, फिर भी भोक्ता को देखने वाला ज्ञाता नहीं बदलता। ये जो ज्ञाता है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, नहीं हो तभी भी ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, लेकिन ज्ञाता अपनी महिमा भूलकर व्यक्तित्व में आ जाता है। व्यक्तित्व की पराधीनता जब तक बनी रहेगी तब तक सच्चे जीवन का दर्शन नहीं होगा, और व्यक्तित्व की पराधीनता तब तक रहती है जब अपने व्यक्तित्व को संभालने की इच्छा होती है। व्यक्तित्व को ही व्यक्तित्व की आवश्यकता, कृपा, दया, प्रमोशन आदि की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्तित्व मिट जाए तो किसी के व्यक्तित्व की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुन, फिर चाहे वैकुंठाधिपति हो, चाहे इंद्र हो, चाहे और कोई हो, व्यक्तित्व मिटते ही किसी के व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं रहती। व्यक्तित्व हम संभाले हुए हैं, उसीलिए किसी के व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है। जय जय। और व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व की आवश्यकता लगती है अज्ञान से। चलो अब दूसरी सूक्ष्म पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी जन्म बिन, कोई भी क्रिया का जन्म इच्छा के बिना नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करो तो बिना इच्छा के कार्य नहीं हो सकता। किसी भी कर्म का जन्म बिना इच्छा के नहीं होता, और इच्छा होती है संसार को, शरीर को सत्य मानकर सुख की आकांक्षा पकड़ के इच्छा होती है।
चाहे फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्वास्थ्य शरीर के भोग आराम का सुख, कोई न कोई सुख की इच्छा से ही क्रिया का जन्म होता है। जय जय। सुख की इच्छा के बिना क्रिया का जन्म नहीं होता है, और सुख की इच्छा तब तक बनी रहती है जब तक पूर्ण सुख का ज्ञान नहीं, और पूर्ण सुख के ज्ञान में तब तक रुचि नहीं होती जब तक तीव्र विवेक नहीं, और तीव्र विवेक तब तक नहीं आता जब तक बुद्धि का तीव्र चमत्कार प्रकट नहीं होता। बुद्धि में अगर सत्य असत्य का विश्लेषण करने की ठीक से क्षमता आ जाए तो तमाम प्रकार की इच्छाएं शांत होने लगती। तमाम प्रकार की इच्छाएं शांत होते ही तमाम प्रकार की क्रियाओं से जो कर्मों की जाल गुंथता है प्राणी, वो जाल गुंथना बंद हो जाएगा।